नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन ना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। सुजन एम वाइनशेंक की पुस्तक 100 थिंग्स एवरी डिजाइनर नीड्स टू नो अबाउट पीपल डिजाइन और व्यवहारिक मनोविज्ञान के संगम पर लिखी गई एक संदर्भ मार्गदर्शिका है। इसका उद्देश्य डिजाइनरों को यह समझाना है कि लोग स्क्रीन, उत्पाद, संदेश और विकल्पों के सामने वास्तव में कैसे देखते, सोचते, याद रखते और निर्णय लेते हैं। पुस्तक 100 छोटे शोध आधारित विचारों में व्यवस्थित है, इसलिए इसे आरंभ से अंत तक पढ़ने के बजाय किसी डिजाइन समस्या के समय उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। वाइनशेंक, जो मनोविज्ञान और उपयोगिता के क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं, सौंदर्य केंद्रित डिजाइन के बजाय मानव केंद्रित प्रभावशीलता पर जोर देती हैं। इसमें धारणा, ध्यान, स्मृति, प्रेरणा, भावनाएं, सामाजिक व्यवहार और निर्णय जैसे विषय आते हैं। पुस्तक का केंद्रीय तर्क यह है कि अच्छा डिजाइन उपयोगकर्ता से आदर्श तर्कशील व्यक्ति जैसा व्यवहार अपेक्षित नहीं करता। वह मानवीय सीमाओं, आदतों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और संदर्भ को ध्यान में रखता है। वेबसाइट, ऐप, फॉर्म, ई कॉमर्स, अनुभव और सूचना प्रधान उत्पादों पर काम करने वालों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, दृश्य धारणा और ध्यान को दिशा देने वाला इंटरफेस। पुस्तक का एक प्रमुख आधार यह है कि उपयोगकर्ता किसी पृष्ठ को निष्पक्ष और क्रमिक ढंग से नहीं पढ़ते। उनकी नजर आकार, रंग, गति, स्थान, विरोधाभास और आसपास के दृश्य संदर्भ से प्रभावित होती है। वाइनशेंक विशेष रूप से परिधीय दृष्टि के महत्व की ओर ध्यान दिलाती है। व्यक्ति जिस वस्तु को सीधे देख रहा हो, उसके बाहर की हलचल या तीव्र दृश्य संकेत भी उसका ध्यान खींच सकते हैं। इसलिए डिजाइन में गति, चमकीले तत्व या दृश्य विरोधाभास केवल सजावट नहीं है, वे ध्यान के संकेत हैं। लेकिन यही सिद्धांत गलत ढंग से अपनाने पर विघटन भी पैदा कर सकता है। यदि हर बटन, बैनर और सूचना स्वयं को प्रमुख दिखाने लगे तो उपयोगकर्ता को वास्तविक प्राथमिकता समझ नहीं आती। पुस्तक का व्यावहारिक निष्कर्ष दृश्य पदानुक्रम है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसे अगला चरण, भुगतान, खोज या मुख्य संदेश, को स्पष्ट स्थान, पर्याप्त रिक्त जगह और दूसरे तत्वों से अलग पहचान मिलनी चाहिए। सहायक जानकारी को दबाया नहीं बल्कि क्रम में रखा जाना चाहिए। इस तरह डिजाइन उपयोगकर्ता की नजर को नियंत्रित करने के बजाय उसे स्वाभाविक मार्ग देता है। यह सिद्धांत विशेषकर घने डैशबोर्ड, लैंडिंग पेज और मोबाइल स्क्रीन में संज्ञानात्मक भ्रम घटाने के लिए उपयोगी है। दूसरा, सीमित स्मृति के अनुसार सूचना और कार्यों को सरल बनाना। वाइनशेंक बताती है कि मनुष्य की कार्यशील स्मृति सीमित होती है। उपयोगकर्ता एक ही समय पर बहुत सारे निर्देश, विकल्प, शब्द या चरणों को सक्रिय रूप से याद नहीं रख सकता। इस तथ्य का सीधा डिजाइन परिणाम यह है कि इंटरफेस को उपयोगकर्ता से अनावश्यक याद रखने की मांग नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी फॉर्म में पहले पृष्ठ की जानकारी बाद के निर्णय के लिए जरूरी है तो उसे दिखाई देना चाहिए, केवल याद रखने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसी प्रकार परिचित संकेत, स्पष्ट लेबल और स्थिर नेविगेशन उपयोगकर्ता का मानसिक श्रम घटाते हैं। पुस्तक अर्थपूर्णता पर भी जोर देती है। लोग उस जानकारी को अधिक अच्छी तरह याद रखते हैं जो उनके लक्ष्य, अनुभव या तत्काल आवश्यकता से जुड़ती है। इसलिए केवल फीचरों की सूची देने के बजाय उनके उपयोग और लाभ को संदर्भ सहित दिखाना अधिक प्रभावी हो सकता है। सरलता का अर्थ हर जानकारी हटाना नहीं है। अर्थपूर्ण जानकारी को सही समय पर छोटे हिस्सों में और समझने योग्य संरचना के साथ देना आवश्यक है। यह विचार प्रगतिशील प्रकटीकरण से जुड़ता है, जिसमें उपयोगकर्ता को अगले कदम पर वही जानकारी मिलती है जिसकी उसे अभी जरूरत है। परिणाम स्वरूप अनुभव छोटा नहीं बल्कि मानसिक रूप से हल्का बनता है। तीसरा, अचेतन निर्णय, भावनाएं और विकल्पों की सीमा। पुस्तक निर्णय को केवल तर्क और तुलना की प्रक्रिया नहीं मानती। वाइनशेंक के अनुसार लोग अनेक निर्णय अचेतन स्तर पर लेते हैं, जहां भावना, मनोदशा, संदर्भ और पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपयोगकर्ता किसी उत्पाद को समझने से पहले भी उसके दृश्य, स्वर, भाषा, भरोसे के संकेत और प्रस्तुति से प्रतिक्रिया बना सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि डिजाइनर लोगों को भ्रामक तरीके से प्रभावित करे, बल्कि उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि स्पष्ट तर्क भी तभी काम करता है जब अनुभव सुरक्षित, सहज और प्रासंगिक लगे। विकल्पों के मामले में पुस्तक एक उपयोगी तनाव दिखाती है। लोग अधिक विकल्प और अधिक जानकारी चाहते हैं क्योंकि चयन उन्हें नियंत्रण का अनुभव देता है। फिर भी वे बहुत अधिक विकल्पों को आसानी से संसाधित नहीं कर पाते। इसलिए अच्छी प्रस्तुति विकल्पों को समाप्त करने के बजाय उन्हें वर्गीकृत, अनुशंसित या क्रमबद्ध करती है। तुलना के लिए आवश्यक अंतर स्पष्ट किए जाते हैं और प्रमुख निर्णय को अनावश्यक विवरण के नीचे नहीं दबाया जाता। मूल्य निर्धारण, सदस्यता योजनाएं, खरीद प्रवाह और कॉल टू एक्शन इस सिद्धांत के स्पष्ट उपयोग क्षेत्र है। मूड भी निर्णय को बदल सकता है, इसलिए त्रुटि संदेश, प्रतीक्षा स्थिति और रद्द करने के विकल्प जैसे छोटे क्षणों का स्वर भी महत्वपूर्ण होता है। डिजाइन का लक्ष्य दबाव बनाना नहीं, निर्णय की अनिश्चितता कम करना होना चाहिए। चौथा, कहानी, प्रासंगिकता और भावनात्मक जुड़ाव का उपयोग। वाइनशिंग की चर्चा में कहानी केवल ब्रांडिंग की सजावटी तकनीक नहीं है, मनुष्य घटनाओं, कारणों और परिणामों के रूप में जानकारी को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति रखता है। जब कोई संदेश उपयोगकर्ता की समस्या, उसके सामने आने वाली बाधा और समाधान के क्रम को स्पष्ट करता है, तो वह अलग अलग दावों की सूची से अधिक सहज लग सकता है। इसी कारण किसी उत्पाद का उपयोग परिदृश्य, वास्तविक कार्य प्रवाह या स्पष्ट उदाहरण उसकी उपयोगिता समझाने में सहायक होता है। कहानी का प्रभाव प्रासंगिकता से जुड़ा है। उपयोगकर्ता को यह दिखना चाहिए कि प्रस्तावित जानकारी उसके वर्तमान लक्ष्य से कैसे संबंधित है। बिना संदर्भ के तकनीकी विशेषताएं याद भी कम रहती है और कार्रवाई भी कम प्रेरित करती है। भावनाएं इस प्रक्रिया का एक और भाग है। सकारात्मक भावनात्मक अनुभव जैसे स्पष्टता, प्रगति का बोध, नियंत्रण और भरोसा उपयोगिता को मजबूत कर सकते हैं। इसके विपरीत अस्पष्ट भाषा, अचानक मांगे या डर पैदा करने वाले संकेत तनाव बढ़ाते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत है कि सामग्री, दृश्य और इन्फ्लेक्शन को अलग इकाइयों की तरह न देखें, किसी ऑनबोर्डिंग प्रवाह, सहायता पृष्ठ या खरीद प्रक्रिया में उपयोगकर्ता को यह समझ में आना चाहिए कि वह कहां है, आगे क्या होगा और उसे इससे क्या लाभ मिलेगा। भावनात्मक डिजाइन का अर्थ केवल प्रसन्न रंग नहीं, बल्कि अनुमान योग्य और सम्मानजनक अनुभव है। अंत में सामाजिक संकेत और प्रगतिशील प्रकटीकरण से व्यवहार को सहारा देना। पुस्तक लोगों को मूलतः सामाजिक प्राणी के रूप में देखती है। वे दूसरों के व्यवहार, परिचय, विश्वास और साझा नियमों से संकेत लेते हैं। ऑनलाइन अनुभवों में भी उपयोगकर्ता परिचित सामाजिक अपेक्षाएं लेकर आते हैं, जैसे स्पष्ट संवाद, विश्वसनीय पहचान, उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता। इसलिए समीक्षाएं, वास्तविक उपयोगकर्ता संदर्भ, सहयोगी गतिविधियां और विश्वसनीय संपर्क संकेत निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। पर इन संकेतों का उपयोग तभी उचित है जब वे वास्तविक और सत्यापनीय हो। नकली तात्कालिकता या बनावटी सामाजिक प्रमाण अल्पकालिक क्लिक तो ला सकता है, लेकिन भरोसा नष्ट कर सकता है। वाइनशिंग का एक व्यावहारिक विचार क्लिकों की संख्या के बारे में प्रचलित धारणा को चुनौती देता है। उपयोगकर्ता कई चरणों से गुजरने को तैयार हो सकते हैं, यदि हर चरण उन्हें सही मात्रा में उपयोगी जानकारी देता हो और आगे बढ़ने का कारण स्पष्ट हो। इसे प्रगतिशील प्रकटीकरण कहा जा सकता है। इसका मतलब है कि जटिल प्रक्रिया की सारी जानकारी एक ही स्क्रीन पर डालने के बजाय उसे लक्ष्य के अनुरूप चरणों में बांटा जाए। उदाहरण के लिए पंजीकरण, यात्रा बुकिंग या पेशेवर सॉफ्टवेयर में अगला प्रश्न तभी पूछा जाए जब वह वर्तमान चुनाव के लिए आवश्यक हो। इस दृष्टि में सफलता कम क्लिक नहीं, बल्कि कम भ्रम, निरंतर संदर्भ और उपयोगकर्ता का बना हुआ भरोसा है। निष्कर्ष में 100 थिंग्स एवरी डिजाइनर नीड्स टू नो अबाउट पीपल उन यूएक्स और यूआई डिजाइनरों, प्रोडक्ट मैनेजरों, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्टों और शोधकर्ताओं के लिए सबसे उपयोगी है, जो उपयोगकर्ता व्यवहार को केवल अनुमान, ट्रेंड या निजी पसंद के आधार पर नहीं समझना चाहते। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो वेबसाइट, ऐप, सेवा प्रवाह या भौतिक उत्पादों में लोगों से स्पष्ट कार्रवाई करवाना चाहते हैं, लेकिन उसे उपयोगकर्ता के हित और समझ के साथ संतुलित रखना चाहते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक किसी स्क्रीन, फॉर्म या संदेश का मूल्यांकन अधिक सटीक प्रश्नों से कर सकता है। क्या मुख्य संकेत नजर में आ रहा है? क्या उपयोगकर्ता को बहुत कुछ याद रखना पड़ रहा है? क्या विकल्पों की प्रस्तुति निर्णय कठिन बना रही है? और क्या प्रक्रिया में भरोसेमंद सामाजिक तथा भावनात्मक संकेत मौजूद है? समान डिजाइन पुस्तकों की तुलना में इसकी विशेषता व्यापक, छोटे और संदर्भ योग्य सिद्धांतों का संग्रह है। यह केवल एक प्रक्रिया जैसे उपयोगिता परीक्षण या सूचना वास्तुकला पर केंद्रित नहीं रहती। इसके बजाय यह धारणा, स्मृति, प्रेरणा, भावना और सामाजिक व्यवहार को एक ही डिजाइन दृष्टि में जोड़ती है। हालांकि 100 विचारों की मात्रा पहली बार में भारी लग सकती है, इसलिए इसे क्रमिक अध्ययन, टीम चर्चा या परियोजना से पहले की चेकलिस्ट की तरह पढ़ना अधिक फलदायी होगा। पुस्तक तैयार समाधान नहीं देती, बल्कि बेहतर निर्णय के लिए मनोवैज्ञानिक आधार देती है। यही इसे डिजाइन मनोज्ञान की श्रेणी में स्थायी संदर्भ बनाता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फार्डी वाइनशिंग सूजन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।